ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 251। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष स्वभाव सत्ता में स्थित हुए हैं, उनको ये चारों आख्यात कहे हैं। जितने और शब्दार्थ है वे शशे के सिंह की तरह असत्य है। जगत का निश्चय उनमें नहीं रहता और सब ब्रह्मांड उनको आकाश सा दिखता है। आख्यात की कल्पना भी उन्हें कुछ नहीं फुरती और सब जगत जो दिखता है वह निराकार परम चिदाकाश रूप है, परम निर्वाण सत्ता से युक्त दिखता है और उसी से निर्वाण हो जाता है, इसलिए वही स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार जानकर तुम उस पद में स्थित होंगे, तब बड़ा शब्द करते हुए भी तुम निश्चय से पाषाण शिला सदृश मौन रहोगे और देखोगे, खाओगे, पियोगे, सूंघोगे, परंतु तुम्हारे अपने निश्चय में कुछ न फुरेगा। जैसे पाषाण की शिला फुरना नहीं फुरती, वैसे ही तुम रहोगे। जो पैरों से दौड़ते जाओगे तो भी निश्चय ही चलायमान न होंगे। जैसे आकाश और सुमेरु पर्वत अचल है, वैसे ही तुम भी स्थित रहोगे। क्रिया तो सब करोगे, परंतु हृदय में क्रिया का अभिमान तुमको कुछ न होगा, केवल स्वभाव सत्ता में स्थित होंगे। जैसे मूढ़ बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना करता है, सो वह अविचार सिद्ध है और विचार किए से कुछ नहीं रहता, वैसे ही मूर्ख अज्ञानी आत्मा में मिथ्या आकार की कल्पना करते हैं। विचार करने से सब आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। जैसे मरुस्थल में नदी तब तक दिखती है जब तक विचार करके नहीं देखता और विचार करने से नदी नहीं रहती, वैसे यह जगत विचार करने से नहीं रहता। जगत चैतन्य रूपी रत्न की चमक है। चैतन्य आत्मा का किंचन फूरने से ही जगत रूप होकर भासित होता है। राम जी बोले, हे भगवान, इस जगत का कारण मैं स्मृति को मानता हूं। वह स्मृति अनुभव से होती है और स्मृति से अनुभव होता है। स्मृति और अनुभव परस्पर कारण है। जब अनुभव होता है तब उसको स्मृति भी होती है, तो वह स्मृति संस्कार फिर स्वप्न में जगत रूप होकर क्यों गर्भासित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत किसी संस्कार से नहीं उपजा और किसी अनुभव का संस्कार नहीं है, काकतालीय न्याय से अकस्मात प्रकट हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह जगत आभास मात्र है। आभास का अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि वह उसका चमत्कार है। इतर कुछ बना हो तो उसका नाश भी हो, पर आत्मा से भिन्न तो कुछ हुआ ही नहीं, नाश कैसे और किसका हो? यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। आत्मसत्ता अपने स्वभाव में स्थित है और जगत उसका आभास है। हे रामचंद्र जी, तुम जो स्मृति को कारण कहते हो, तो कारण कार्य भाव आभास वह भासित होते हैं जहां द्वैत है। स्वरूप में तो कुछ कारण कार्य भाव नहीं। जैसे स्वप्न के मरुस्थल में जल भासित हुआ तो उसमें जल माना गया, इसलिए जागकर जब देखा तो उस जल की स्मृति हुई, अथवा स्वप्न के व्यवहारकर्ता को स्वप्नांतर हुआ और उसे स्वप्नांतर में फिर व्यवहार किया। हे रामचंद्र जी, तुम देखो कि उसकी स्मृति भी असत्य हुई और जो उसने अनुभव किया वह भी असत्य है। वैसे ही यह संसार भी है, कुछ भिन्न नहीं है। हे रामचंद्र जी, इसलिए न जागृत है न स्वप्न है, न कोई सुषुप्ति है और न तुर्यावस्था है। केवल अद्वैत सत्ता सब उत्थान से रहित चिन्मात्र स्थित है, इसलिए जगत भी वही रूप है। और यद्यपि क्रिया भी दिखती है तो भी कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में कोई नारी आकर गले से लगती है तो उसकी क्रिया कुछ सच नहीं होती, वैसे ही यह क्रिया भी सच नहीं। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय शब्दों का अर्थ निश्चय ज्ञानवान पुरुष को है, और यह उसको खरगोश के सिंह और आकाश के फल से असत्य प्रतीत होते हैं। जैसे बंध्या का पुत्र और श्याम चंद्रमा शब्द कहने भर को है, उसका अर्थ असत्य है, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में पांचों अवस्थाओं का होना असंभव है। वह सर्वदा जागृत है। जागृत उसका नाम है जहां अनुभव हो। वह अनुभव सत्ता सदा जागृत रूप है। जैसा पदार्थ आगे आता है उसी का जीव अनुभव करता है। इसे सर्वदा सब कालों में जागृत है अथवा सर्वदा स्वप्न है। स्वप्न उसका नाम है जहां पदार्थ विपर्य यानी उल्टे दिखते हैं। सो सब पदार्थ विपर्य ही दिखते हैं। विपर्य से रहित एक आत्मा है, उसमें जो पदार्थ भासित होते हैं सो विपर्य है, इसलिए सब काल में स्वप्न ही है अथवा सर्वदा सुषुप्ति ही है। सुषुप्ति उसका नाम है जहां अज्ञान वृत्ति हो। मैं अपने वास्तव रूप को भी नहीं जानता, इसलिए न जानने सर्वदा सुषुप्ति है अथवा सर्वदा तुर्यावस्था है। तुर्यावस्था उसका नाम है जो साक्षीभूत सत्ता हो, जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का अनुभव होता है, जो सर्वदा उसका अनुभव करता है वह प्रत्येक चैतन्य है। इसे सर्वदा तुर्य पद है अथवा सर्वदा तुर्यातीत पद है। तुर्यातीत उसको कहते हैं जो अद्वैत सत्ता है, जिसके पास द्वैत कुछ नहीं, सो सर्वदा अद्वैत सत्ता है। उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, इसलिए सर्वदा तुर्यातीत पद है। जो मुझसे पूछो तो मुझको तरंग, बुलबुले, झाग और भंवर कुछ नहीं भासित होते, सर्वदा चित समुद्र ही दिखता है। उदयस्त से रहित आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, और पृथ्वी आदि तत्व जो दिखते हैं वे भी कुछ उपजे नहीं, आत्मसत्ता का किंचन ही इस प्रकार भासित होता है। जैसे नख और केश उपजते भी है और नाश भी हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपजता भी है और लीन भी हो जाता है। जैसे नख और केश उपजने और काटने से शरीर ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जगत के उपजने और लीन होने में आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत उपजा नहीं तो उसमें सत्य और असत्य कल्पना और स्मृति क्या कहिए, और भीतर और बाहर क्या कहिए। अद्वैत सत्ता में कुछ कल्पना नहीं बनती। जो तुम कहो कि स्मृति भीतर होती है परंतु भीतर से बाहर दिखती है, तो भीतर अनुभव की अपेक्षा से हुई है, वह भी उत्पन्न नहीं हुई, तब मैं भीतर और बाहर क्या कहूं। जैसे स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, सो वह अपना ही अनुभव होता है और वही सृष्टि रूप दिखता है। वहां तो भीतर बाहर कुछ नहीं है, वैसे ही यह जगत भीतर बाहर कुछ नहीं है, सब भ्रम रूप है। जिसको इच्छा कहते हैं उसे ही स्मृति कहते हैं। विद्या अविद्या, इष्ट अनिष्ट आदि सब शब्द सब आत्मा के ही नाम हैं। आत्मा से भिन्न और पदार्थ कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जाग कर देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। मिथ्या भ्रम को अंगीकार करके भिन्न क्यों देखते हो? सब शब्द बिना अर्थ के कही नहीं है, और शब्द अर्थ का विचार संकल्प से होता है। संकल्प तब उठता है जब चित्त में अहम अभिमान होता है। उस चित्त को आत्मसार में लीन करो। जब चित्त का निर्वाण करोगे तब सब जगत शांत हो जाएगा। अहम के दर्पण में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है, जगत कुछ वस्तु नहीं है। जब चित्त निर्वाण हो जाएगा तब सब द्वैत कल्पना मिट जाएगी। यह जो मोक्ष शास्त्र मैंने तुमसे कहा है, इसके अर्थ कर, विचार कर, संकल्प को त्याग कर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित हो रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वैसे ही सम्मित सत्ता से आदि सृष्टि जगी है, और जैसे जल स्वाभाविक द्रवता से तरंग रूप अपने सत्ता से बढ़ता जाता है, वैसे ही आत्म सत्ता से जगत का विस्तार होता है। यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब चिन्मात्र आत्मसत्ता का आभास बहिर्मुख जगता है, तब अंतःकरण चतुष्ट होते हैं। उनमें जो निश्चय होता है उसका नाम नीति है। वह प्रथम अकस्मात कारण के बिना स्वाभाविक ही जग आई है और आभास मात्र है। जब वह दृढ़ हो गया तब नीति स्थित हुई। वास्तव में द्वैत कुछ बना नहीं, जो सम्यक दर्शी पुरुष है उसको सब आत्मा ही दिखता है। जैसे पत्ते फूल फल टहनी सब वृक्ष है, उससे भिन्न नहीं है। हे रामचंद्र जी, वृक्ष में जो फूल फल और टहनी होती है, सो किसी कारण से बुद्धिपूर्वक बनी नहीं होती, वैसे ही इस जगत को भी जानो। जो सम्यक दर्शी है उसको भिन्न भिन्न रूप भी पत्ते टास आदि के विस्तार में एक वृक्ष ही दिखता है। वैसे ही यथार्थ ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है, और मिथ्या दृष्टि वाले को भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, वृक्ष को देखने वाला भी और होता है, और दृष्टांत में दूसरा कोई नहीं। चैतन्य आत्मा का आभास ही चैत्य है, वही चैत्य रूप होकर भासित होता है। उस चैतन्य आभास को असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। जैसे पत्ते फूल फल और वृक्ष अपने को भिन्न जाने, असम्यक दर्शी सबको आत्म रूप देखता है। ज्ञानी और अज्ञानी सब आत्म रूप है। जैसे दीवार पर लिखी पुतलियां दीवार से भिन्न नहीं होती, वैसे ही सर्वगत आत्मरूपी दीवार के सब दृश्य चित्र है, वे आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता, फूलों में सुगंध, जल में द्रवता, वायु में स्पंदनता और अग्नि में उष्णता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। यह जगत भी अचैत्य चिन्मात्र है। हे रामचंद्र जी, जगत आत्मा का आभास ही है। जो तुम कहो कि अचैत्य चिन्मात्र है, तो पृथ्वी पहाड़ आदि आकार क्यों दिखते हैं? तो हे राघव, जैसे नित्य प्रति जो तुमको स्वप्न आता है और उस अनुभव आकाश में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं, तो वही चिन्मात्र ही आकार होकर दिखता है और कुछ नहीं बना, वैसे ही इसे भी तुम जानो। यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह अनुभव रूप है। जैसे चिन्मात्र आत्मा में यह सृष्टि आभास मात्र है, वैसे ही कारण कार्य भाव भी आभास मात्र ही है, परंतु वही रूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। यह पदार्थ कार्य कारण अभ्यास की दृढ़ता से उपजे लगते हैं, परंतु आदि सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, पीछे कारण से कार्य हुए हैं। यद्यपि कार्य कारण दिखते हैं, तो भी कुछ उपजे नहीं, सदा अद्वैत रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के कार्य कारण दिखते हैं, परंतु कुछ हुए नहीं, सदा अद्वैत रूप है, वैसे ही जागृत में भी तुम जानो। पदार्थों की स्मृति भी स्वप्न में होती है और अनुभव भी स्वप्न में होता है। जब स्वप्न ही नहीं हुआ तो स्मृति कहाँ है और अनुभव कहाँ है? न जगत का अनुभव है न जगत है, अनुभव सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। जो जागृत रूप है, जब उसका अनुभव होगा तब न स्मृति रहेगी और न जगत रहेगा। इसलिए हे रामचंद्र जी, जो अनुभव रूप है उसका अनुभव करो। यह जगत भ्रम रूप है, जो उपजा नहीं वह स्वतः सिद्ध है, और जो उपजा है और जिसमें दिखता है उसे उसी का रूप जानो, भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वे उपजे नहीं परंतु उपजे दिखते हैं, सो वे अनुभव में उपजे हैं। अनुभव स्वतः सिद्ध है, उसमें जो पदार्थ भासित होते हैं वे अनुभव रूप है, और अनुभव रूप ही इस प्रकार होकर दिखता है, वैसे ही ये सब अनुभव रूप है, भिन्न पदार्थ कुछ नहीं। यह सब जगत आत्म रूप है, इसलिए हे रामचंद्र जी, सब जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना। अनंत ब्रह्म सत्ता ब्रह्मांड में आभास जगते हैं, वे अज्ञानी को कार्य कारण सहित प्रतीत होते हैं। उसमें नीति हुई है, परंतु जाग कर देखोगे तब सब अद्वैत रूप देखेगा। न कोई नीति है और न जगत है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है, तब तक जो पदार्थ उस सृष्टि में है वही दिखेगा, और जैसा कर्म है वही भासित होगा। यह जगत एक स्वप्न है, जिसमें स्वर्ग आदिक इष्ट पदार्थ और नरक आदिक अनिष्ट पदार्थ है, और उनके प्राप्त होने का साधन धर्म तथा अधर्म है। धर्म स्वर्ग सुख का और अधर्म नरक दुख का साधन है। जब तक अविद्या रूपी निद्रा में जीव सोया हुआ है, तब तक इनको यथार्थ जानता है, परंतु जब जागेगा तब सब आत्म रूप होगा। इष्ट अनिष्ट कोई न रहेगा। यह सब जगत अनुभव रूप है और अनुभव सदा जागृत ज्योति है, उसी को तुम जानो। जिन पुरुषों ने इस अनुभव को नहीं जाना वे उन्मत्त पशु हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।